Hare Om Om Brahma se Shiv Bhai bolte dhaniyon Brahma mukh se madhur vani bolte dhaniyon Brahma se Shiv Baba padhare bolte dhaniyon Brahma mukh se madhur vani बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओ
शांति ओम शांति रामानुसार ओम शांति भवन में मुरली का प्रोग्राम नहीं चल पा रहा है क्योंकि वहां रिनोवेशन हो रहा है बहुत जरूरत थी इसलिए अभी सारा प्रोग्राम यहाँ मेडिटेशन हॉल में ही होगा जब तक ओम शांति भवन का थोड़ा और निर्माण हो जाए तो आज सद्गुरुवार है सद्गुरुवार के सबको बहुत बहुत बधाई हो बधाई हो बधाई हो और आज नीचे शांतिवन से दौड़ दौड़ करके ऊपर पहुंचे मधुबन में सतगुरुवार मनाने हाँ जो नीचे से आए हैं अभी सुबह सुबह दौड़ करके वो हाथ उठाए देखो सारे यहाँ कितने आए हैं हाँ थोड़ा बिंदु बन जाओ भाई और अभी औरों को बताने दो प्लीज उनको कहो नीचे भी स्पीकर चल रहा है हिस्ट्री हॉल में भी चल रहा है आंगन में भी चल रहा है वहीं पर ही सुनेंगे क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो सतगुरु बाबा आकर के हम बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं बाबा कहते अभी तक तो तुमने जो कुछ सुना वो सब भक्ति भक्ति की बातें थी मनुष्य आत्माएं जो भी सुनाती है वो भक्ति की बातें सुनाती है तीन प्रकार के पुस्तकें हैं एक पुस्तक है ज्ञान के दूसरे पुस्तक है शास्त्रों के और तीसरे पुस्तक है नॉवेल्स दुनिया में नॉवेल्स कितनी है, कितनी क्या क्या कहानियां बनाई है वो नॉवेल्स के रूप में, और दूसरा है शास्त्रों का ज्ञान, वो भी तो ज्ञान कहते हैं तो है शास्त्रों का, पर है भक्ति का ज्ञान, और तीसरा फिर ये आध्यात्मिक ज्ञान जो बाबा हम बच्चों को देते हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान में क्या क्या बातें आती है, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, चक्र का ज्ञान, समय का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, ये सब है आध्यात्मिक ज्ञान। और बाबा कहते इस आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मनुष्य जैसे बुद्धू है सचमुच, चाहे कितना भी उनके पास शास्त्रों का ज्ञान है लेकिन खुद का ज्ञान नहीं है। परमात्मा की बातें तो बहुत सुनाते हैं लेकिन परमात्मा का सही परिचय नहीं है। तो भगवान खुद आकर के अपना और अपनी रचना की पहचान देते हैं, और जब वो पहचान हम बच्चों को मिल जाती है तब हम बाबा कहते समझदार बन जाते हैं। तब तक तो यही कहेंगे ना, ना समझ थे, बेसमझ थे। तो अब बाबा ने कितनी समझ हम बच्चों को दी है, हर बात के लिए समझ दी है, जिसको बाबा कहते हैं श्रीमत। श्रीमत जो भगवान के सिवा और कोई नहीं दे सकता है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को चारों सब्जेक्ट्स की गहराई भी बताई है, ज्ञान की गहराई तो बताई ही है, लेकिन फिर बाबा योग की गहराई भी बताते हैं, धारणा भी बताते हैं, सेवा के लिए भी बाबा युक्तियां बताते हैं। तो कल भी बाबा ने क्या कहा, बाबा जादूगर है। वैसे यहाँ कोई जादू नहीं है, कोई यहाँ चमत्कार नहीं दिखाया जाता है। दुनिया में तो जादू दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, यहाँ चमत्कार को नमस्कार नहीं है, यहाँ तो पुरुषार्थ करना है। लेकिन बाबा जादूगर कैसे हैं, कल बाबा ने क्या कहा, मैं जादू से कैसे तुमको कांटों से फूल बना देता हूँ। तुम कितने बड़े कांटे थे ना, कांटे क्या करते हैं, दुख देते हैं। तो हम क्या करते थे, मन से, वचन से, कर्म से कितना दुख देते थे। अब बाबा ने हमें कांटों से फूल बनाया है, अब किसको दुख नहीं देते, फूल किसको दुख नहीं देते, देते क्या नहीं, फूल तो सुख देते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को कितना सुख देते हैं, जो हम सहज ही कितनी ऊंचे कर्म कर लेते हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो देवता ही चोला भी याद करो, हम क्या बन रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं, अगर ये भी सोचेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। तो सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य। आज 29 जनवरी 2026 है। मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। बस बाबा को याद करो, वो भी स्वीट बाबा। कल बाबा ने क्या कहा, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, तो स्वीटेस्ट कौन है, शिव बाबा। तो स्वीटेस्ट बाप को, मोस्ट बिलवेड बाप को। तो आज बाबा कहते अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। प्रश्न है, बहुत ही गहरा प्रश्न है। जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, बाबा के सामने जाते थे, दादियों के सामने जाते थे, कितनी कशिश होती थी, बस बाबा को भी देखते थे, जैसे बाबा अव्यक्त होते गए, विकर्मातीत अवस्था को पाते गए, बाबा की इतनी कशिश होती थी, बस सामने बैठ जाए, बाबा से कुछ पूछे नहीं, बस बाबा को देखते रहे, दृष्टि लेते रहे, बाबा को वरदान दे हमारे मुख से कुछ न निकले। अब एक बाप दादा से भी यही अनुभव करते थे, दादियों से भी यही अनुभव करते थे। तो जैसे बाबा में कशिश थी, दादियों में कशिश थी, अब हमारी स्थिति भी ऐसी हो कि जो हमको देखे उनको कशिश हो और ऐसे लगे कि हमें ये वरदान दे, हमें ये शांति दे, हमें ये शक्ति दे, क्योंकि अभी इसी की आवश्यकता है दुनिया को। तो बाबा कहते हैं, प्रश्न है, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? आत्माएं हमारी तरफ भी देखी और कशिश हुआ, इनसे हम बात करें, इनसे हमें शांति मिलती है, इनसे हमें बड़े पवित्र वाइब्रेशन मिलते हैं, तो किन बच्चों की कशिश सबको होगी? क्या विशेषताएं होगी हमारे में जब हमारे से भी औरों को कशिश हो? तो उत्तर है, जो फूल बने हैं, थोड़े कांटे होंगे हमारे अंदर, दुख देते होंगे तो थोड़ी कशिश होगी। जो फूल बने हैं, जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं है, तो सबको कशिश करते हैं ना। छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं, जैसे ऐसे किया तुरंत आ जाएंगे, तो कशिश करते हैं छोटे बच्चे, क्योंकि उनको विकारों का पता ही नहीं है, फूल बच्चे हैं, तो सबको कशिश करते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी, तुम्हारे से इतनी पवित्रता की झलक आए सबको, जो सबको वो कशिश हो। तो जब तुम फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी, तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। इस पर बहुत ध्यान देना है, विकारों का, विकार बड़े कांटे हैं। सबसे बड़ा कांटा कौन सा है? देहाभिमान। फिर और भी विकार के बहुत कांटे हैं। हाँ, बबूल का कांटा बाबा कहते सबसे बड़ा होता है, और बाबा है शिव, बाबा का नाम क्या है? बबूलनाथ। तो सबसे बड़ा बबूल विकार जो है, काम विकार देहाभिमान के कारण, वो कांटा सबसे बड़ा है, और बाबा उस पर ही विजय भी प्राप्त कराते, तो और विकार भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होते ही जाते हैं। तो तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? कौन सा हमारा भविष्य का पुरुषोत्तम मुख? लक्ष्मी नारायण। तो बाबा पूछते हैं, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? सत्युग का चोला जो हमको मिलेगा कैसा होगा? कितना पवित्र, कितना शुद्ध, सतो प्रधान, कंचन काया, निरोगी काया, सब कुछ, कितनी कशिश होगी, है ना? अभी भी देखो उनकी मूर्तियों में कितनी कशिश है। तो जब वो प्रैक्टिकल में होंगे सतयुग में तो कितनी कशिश होगी उनमें। तो बाबा कहते हैं, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया में सतयुग में इनकी यानी लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे? लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। तो बैठे बैठे ये विचार आते हैं, आते हैं ऐसे विचार। इसलिए बाबा हमेशा क्या कहते, लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठ जाओ और देखो अपने आप को, भेंट करो, वो कैसे और हम कैसे, खाली कपड़ों को भेंट नहीं करो, वो हमको अभी तो बाबा कहते वनवा में हो, लेकिन उनका चेहरा देखो, उनकी अंदर की सीरत भी अनुभव होती है, क्या उनके अंदर गुण है। तो बाबा कहते हैं बैठे बैठे ये विचार आते हैं, स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो जो दर्जा पढ़ते हैं वो जरूर बुद्धि में होगा ना, क्या बनेंगे वो भी बुद्धि में होगा, मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा, ये उनकी बुद्धि में बहुत होता है। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो ये जानते हो हम विष्णु डायनेस्टी में जाएंगे, विष्णु की वंशावली में जाएंगे, उनकी परिवार में जाएंगे, तो विष्णु डायनेस्टी में जाएंगे, विष्णु के राज्य में जाएंगे। विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, देवी और देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करती होगी, तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं, है ना, सब बातें हमारी बुद्धि में, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहा जाता है उनके संग में बैठे हैं। सब किसके संग में बैठे हैं? शिव बाबा के संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचयिता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और ये नॉलेज देते हैं। जैसे कि नॉलेज जो बाबा देते हैं, बाबा कहते हैं ये नॉलेज जैसे कि कल की बात सुनाते हैं, कल जो बीत गया उसकी बात भी सुनाते हैं और कल जो आने वाला है उसकी बात भी सुनाते हैं। तो जैसे कल की बात सुनाते हैं, यहाँ बैठे हो तो ये तो याद होगा ना कि हम आए हैं, आज बाबा ने इंग्लिश शब्द यूज किया रिजुविनेट होने, रिजुविनेट होने, जैसे कोई पुरानी चीज को एकदम नया बना देते हैं ना, तो हम कितने पुराने पतित विकारी तमो प्रधान, और बाबा आके हमको एकदम देखो कितना नया फूल बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ बैठे हो तो ये याद होगा ना कि हम आए हैं रिजुविनेट होने, अर्थात रिजुविनेट होने माना ये शरीर बदल देवता शरीर लेने। यहाँ क्यों आए हो? ये शरीर बदल देवता शरीर लेने के लिए आए हो। आत्मा कहती है हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदल कर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है, पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना, टीचर तो जरूर स्टूडेंट से होशियार होगा ना, उसको सब प्रश्नों का जवाब है। स्टूडेंट प्रश्न करे और टीचर को जवाब ही ना आए तो वो उसको टीचर कहेंगे क्या? टीचर तो जरूर स्टूडेंट से होशियार होना चाहिए। तो पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा, लेकिन कई बार बाबा ये भी कहते हैं जब कोर्स कराते हो, मान लो कोई ने प्रश्न ऐसा पूछा जो आपको जवाब नहीं आता है, तो फिर क्या कहो? ऐसे नहीं उल्टी उल्टी बातें, कुछ और अपने मन गणित बातें सुना दो उनको, कहो कि मैं अपनी बड़ी बहन को बुलाती हूँ, वो आपको इसका अर्थ बताएगी, कि नहीं आता है तो नहीं आता है, अपने मन की बातें नहीं बताना जो बाबा ने नहीं सुनाई है। तो फिर बाबा कहते रिफर करो बड़ी बहन के पास। तो बाबा कहते हैं तो अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो जरूर ऊंच होगा ना, टीचर अच्छे कर्म करना सिखाता है, वैल्यूज की बातें सुनाता है, तो वो जरूर बाबा कहते हैं ऊंच होगा ना टीचर। तो तुम जानते हो हमको सबसे ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, ऐसा तो कोई और टीचर होगा ही नहीं, सबसे ऊंचा टीचर तो भगवान ही है। भविष्य में हम सो देवता बनेंगे, हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए, और कोई को नई दुनिया का पता भी नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में अब आता है ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, तो जरूर फिर रिपीट होगा, थे फिर होंगे। तो बाप समझाते हैं, तुमको पढ़ाकर मैं मनुष्य से देवता बनाता हूँ, देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे। दैवी राजधानी होती है ना, तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा, है सबका ऐसे ही सारा दिन यही ख्यालात चलता है। सबसे पहला अभी किसका मोबाइल ही बजते रहते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ करो ना, माताओं को पता ही नहीं चलता कहाँ रखा है मोबाइल, देखो अभी ढूंढ ही रही है कहाँ रखा है मोबाइल, बजता रहता है। क्लास में आना माना मोबाइल स्विच ऑफ, या एकदम साइलेंस पर, बिल्कुल नहीं बजना चाहिए यहाँ मोबाइल। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा। कौन सा ख्यालात? जो बाबा कहते सारा दिन चलना चाहिए, चलो और बातें तो इतनी ज्ञान की नहीं चलेगी सारा दिन, पर एक ख्यालात बाबा कहते सारा दिन चलना चाहिए। कौन सा ख्यालात? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये ख्यालात सारा दिन चलना चाहिए। सारा दिन ये ख्यालात चलता होगा कि हम आत्मा हैं। अब आत्मा क्या बन गई, फिर क्या बनना है, वो भी ख्यालात चलता है। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी, सो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। याद का अर्थ भी समझना है, आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं बच्चे मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना, अब बाबा क्या पूछेंगे, बच्चे कितना समय याद करते हो, कितना समय याद करते हो। याद करने में ही माया की लड़ाई है, ज्ञान में माया की लड़ाई नहीं है। किसमें है माया की लड़ाई? याद में। तुम खुद समझते हो ये यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। बाबा को याद करने बैठते हैं और जैसे अंदर ही अंदर युद्ध चलती है, तो जैसे कि लड़ाई है, इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने में ही माया विघ्न डालती है, अर्थात याद भुला देती है। कहते भी हैं बाबा हमको आपकी याद में रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर वन तूफान है देह अभिमान का। नंबर वन तूफान है देह अभिमान का। फिर है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर दुश्मनी हेराफेरी बेईमानी छल कपट क्या नहीं निंदा चुगली गिनती करते जाओ कितनी। बाबा कहते हैं ये सब तूफान आते हैं। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, फिर लोभ का तूफान, ऐसे दैश दैश। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। कई बार ऐसे भी होता है, इतनी अच्छी अवस्था होती है कोई तूफान नहीं आता। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी, बाबा को बहुत याद किया। याद में प्रेम के आंसू भी बहते रहते हैं। बाप की याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। बाबा की याद में रहने से मीठे बन जाएंगे। तुम बच्चे ये भी समझते हो हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक पहुँचे हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं, क्या हिसाब निकालते हैं? कल्प का हिसाब निकालते हैं ना, हिसाब निकालते हैं कल्प में कितने मास कितने दिन, ये कितने मिनट कितने सेकंड गिनती वो हिसाब निकालते हैं। तो बुद्धि में आता है ना, अगर कोई कहे लाखों वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब थोड़ी कर सकते हैं। बाप समझाते हैं ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डिनाइस्टी में जाते हैं, राजाई में जाते हैं, ये तो जानते हो ना। ये बिल्कुल नई बातें हैं। अभी राजाई है ही नहीं भारत में, और फिर सतयुग में राजाई हो जाएगी। तो बाबा कहते कैसे जाते हैं, ये तुम जानते हो ना, ये बिल्कुल नई बातें हैं, नई नॉलेज है नई दुनिया के लिए। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। तुम कहेंगे अभी हम मनुष्य हैं, फिर देवता बन रहे हैं, देवता पद है ऊंच। तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं, ऐसी नॉलेज जो भगवान देते हैं कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती। सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं, हमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल न्यारा विचित्र है, जिसको कोई चित्र नहीं है, देह नहीं है, वो है पढ़ाने वाला। उनको ये साकार चित्र नहीं है, वो है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पाठ रखा हुआ है, कैसा अच्छा पाठ रखा हुआ है का मतलब कैसे बाप पढ़ाते हैं। तो कैसे पढ़ाते हैं बाप, तो खुद बतलाते हैं मैं फलाने तन में आता हूँ, हाँ इनके तन में आता हूँ, फलाने तन में आता हूँ, किस तन में आता हूँ वो भी बताते हैं। मनुष्य बहुत पूछते हैं, मूंजते हैं ना, इसके तन में क्यों, इनके तन में क्यों। हाँ तो एक बार तो कह दिया, अच्छा तुम्हारे तन में आवे, इनके तन में क्यों, इनके तन में क्यों, तुम्हारे तन में नहीं, नहीं 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 हमारे तन में नहीं आवे। हाँ डर लगता है, पता नहीं क्या होगा। तो बाबा कहते हैं तो किस तन में आता हूँ वो भी बताते हैं। तो मनुष्य मूंजते हैं क्या एक ही तन में आएगा, परंतु ये तो ड्रामा है ना, अब ये समझना है, तो ड्रामा है। तो ड्रामा माना जिस तन में पिछले कल्प में आए थे वो उसी तन में ही आएंगे ना, वही रिपीट होगा। तो ये तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज हो नहीं सकती है। ये बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो और सुनाते हो। कहीं ये सोचेंगे इस कल्प में चलो इसके तन में आए, अगले कल्प में दूसरे के तन में आए, फिर उसके अगले कल्प पे तीसरे के तन में आए, ऐसे होगा क्या? हाँ उसी तन में आएंगे। तो बाबा कहते इसमें चेंज हो नहीं सकती, ये बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो और सुनाते हो। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही पढ़ती है ना, पढ़ती आत्मा है, आत्मा ही सीखती है, आत्मा ही सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है, बहुत कीमती है आत्मा। आत्मा अविनाशी अमर है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से नॉलेज ले रही है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेता है, कौन लेती है नॉलेज, आत्मा। आत्मा अविनाशी है, मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में। अब ये बहुत बड़ी बात है, अविनाशी चीज में मोह रखना चाहिए, विनाशी चीज में हम मोह रखते हैं तो वो विनाशी चीज तो नष्ट हो जाएगी, फिर दुख होता है। तो बाबा कहते हैं मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में, न कि विनाशी चीज में। तो अविनाशी चीज क्या है, आत्मा है। अविनाशी चीज क्या है, हाँ जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं वो अविनाशी बन जाता है, उसका भविष्य फल हमें मिलता है। तो उस ज्ञान जो गुण शक्तियां खजाने बाबा देते उसमें ध्यान जाना चाहिए ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो, अभी समझते हो हम आत्मा हैं, तो शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते भी हैं, क्या लिखते हैं कि मुझ आत्मा ने ये काम किया, बाबा को पत्र लिखते हैं मुझ आत्मा ने ये किया, मुझ आत्मा ने ये किया, मुझ आत्मा ने ये कहा। तो इसलिए मुझ आत्मा ये पत्र में लिखते हैं, मुझ आत्मा ने आज ये भाषण किया, मैंने किया नहीं, मुझ आत्मा ने किया, ये भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बाबा को बहुत याद किया। वो है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल आत्मा। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं, मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम जानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है रचयिता कौन है। इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है तो जरूर कर्तव्य में आते हैं ना, उसको रचयिता कहते हैं तो जरूर कुछ कर्तव्य करते हैं, रचना रचते हैं, लेकिन ये अविनाशी रचना है, परंतु उसको रिजुविनेट करते हैं, नया बनाते हैं, तो जरूर कर्तव्य में आते हैं। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। बाप ही नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो, तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। शरीर समझ, बाबा कहते हैं उल्टे लटक पड़े हो। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है, आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की आत्मा की कितनी महिमा है, शिव बाबा भी आत्मा है, उस आत्मा की कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे ना, मच्छर की तो थोड़ी महिमा करेंगे, वो दुख की ऐसे तो नहीं कहेंगे मच्छर के लिए कि वो दुख हरता सुख करता है वो तो और ही दुख देता है, मच्छर काटेगा तो दुख होता है ना, तो वो तो दुख देता है, वो दुख हरता सुख करता थोड़ी कहेंगे। तो बाबा कहते हैं मच्छर की थोड़ी महिमा करेंगे कि दुख हटता सुख करता ज्ञान का सागर है, नहीं, ये तो बाप की महिमा है। तुम भी हरे खुद दुख हटता सुख करता हो। देखो बाबा के बच्चे हैं, बाबा को फॉलो करने वाले, तो जैसे बाबा दुख हटता सुख करता है तो हम बच्चों को भी दुख हटता सुख करता बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी हरे खुद दुख हरता सुख करता हो, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना, तो जैसा बाप वैसे बच्चे, जो सबका दुख हर कर और सुख देते हैं, सो भी आधा कल्प के लिए सुख देते हैं। ये नॉलेज और कोई में है नहीं, नॉलेजफुल एक ही बाप है। हमारे में नो नॉलेज, बाबा कहते हैं हमारे में नो नॉलेज, हम आत्माओं में कहाँ नॉलेज थी। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं मुझे थोड़ी ये सब कुछ पहले पता था, मैं भी भक्ति करता था, ये थोड़ी मालूम था कि विष्णु भी, मैं कोई विष्णु बन सकता हूँ। तो बाबा कहते हैं हमारे में भी नो नॉलेज। एक बाप को ही नहीं जानते तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी। भगवान को नहीं जानते, खुद को नहीं जानते, तो बाकी क्या नॉलेज होगी। अभी तुम फील करते हो हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ हम पहले नॉलेज, अभी तुम फील करते हो हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। हाँ, दूसरे सोचते थे ना बहुत नॉलेज है, लेकिन बाबा कहते कुछ भी नहीं जानते थे। बेबी में, छोटे बच्चे में नॉलेज तो होती नहीं, तो क्या थे हम सभी, बाबा के बच्चे नहीं बने थे तो बेबी थे, कुछ भी नहीं जानते थे। और कोई अवगुण भी नहीं होता वैसे, छोटे बच्चे में भी बच्चा पैदा ही हुआ है कितना प्यारा लगता है, तो उसमें कोई अवगुण भी नहीं होते, कुछ ज्ञान भी नहीं होता, इसीलिए उनको महात्मा कहा जाता है क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा, बाबा कहते उतना नंबर वन फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है छोटे बच्चे की, कर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते। कर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ बाबा कहते हैं सिर्फ अपने को ही जानते हैं। हाँ, भूख लगेगी तो रोएगा है ना, और क्या, और कुछ भी नहीं जानता है, तो सिर्फ अपने को ही जानते हैं। वो फूल है बच्चा, इसलिए सबको कशिश करते हैं। जैसे अब बाबा कशिश करते हैं, बाबा के सामने जाते थे, बस बस बैठे रहे, बाबा को देखते रहे, ऐसे कशिश होती थी। अब बाबा कशिश करते हैं, बाप आए ही हैं तुम सबको फूल बनाने। तुम्हारे में कई बहुत खराब कांटे भी हैं, बाबा जानते हैं। बच्चों में भी भले कहेंगे अब शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बहुत खराब कांटे भी हैं। पांच विकार रूपी कांटे हैं ना, इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है। कांटों का जंगल भी होता है, बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है। इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं ना, पूरा इतने अच्छे, ऐसे भी बड़े बड़े कांटे होते हैं, बहुत चुभते हैं। बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है, उन कांटों से भी बहुत चीजें बनती है। वो कांटे फिर भी अच्छे अब कहते उनसे कई चीजें बनती है। भेंट भी की जाती है मनुष्यों की उनसे। बाप समझाते हैं, इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते भी हैं बाप सुख दाता है, माया रावण दुख देता है। फिर सतयुग में माया नहीं होगी तो ये कुछ भी बातें नहीं होगी। ड्रामा में एक पार्ट, अभी बाबा ड्रामा की गहराई बता रहे हैं, ड्रामा में एक पार्ट दो बार नहीं हो सकता। एक आत्मा का ही पार्ट, सारे कल्प में हर सीन नहीं, ड्रामा में एक पार्ट दो बार नहीं हो सकता है। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वो सब नया, भले कहेंगे रिपीट हुआ पिछले कल्प का, लेकिन पता तो है नहीं, तो इसीलिए हर पार्ट नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते, एक्टिविटी बदल जाती, सब बदल जाता है। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वो बदल नहीं सकता। अगले कल्प में फिर वैसा ही पार्ट बजेगा, वो बदल नहीं सकता। लेकिन इस कल्प में जो भी आत्मा की एक्टिविटी चलती है वो दोबारा फिर नहीं आएगी, कोई वही सीन, वो सीन सब बदल जाएगी। हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है, ये एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। अभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, ये स्कूल है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। और फिर क्या करना है हमें, स्कूल में हम पढ़ते हैं तो एक तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है, और फिर बाप को याद कर पवित्र भी बनना है। ये वो पढ़ाई है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना है, फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की भी पढ़ाई है। इनके पहले जानते थे क्या हमको ये बनना है, मालूम था क्या कि हमको लक्ष्मी नारायण बनना है? कुछ पता ही नहीं था कि हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। तो बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, तुम पहले नंबर में ये थे लक्ष्मी नारायण, पहले नंबर में ये थे, फिर तुम नीचे उतरते उतरते अब क्या बन गए हो। दुनिया को तो देखो, दुनिया हाँ को क्या देखो, क्या हो गया, हाँ क्या बन गई है, कहाँ सतयुग और कहाँ अभी कलयुग, क्या बन गई है ये दुनिया। कितने ढेर मनुष्य हैं, इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का तो विचार करो, कैसी होगी लक्ष्मी नारायण की राजधानी, क्या क्या होगा, ये जहाँ रहते होंगे कैसे हीरे जवाहरात के महल होंगे। चले जाओ सतयुग में, हीरे जवाहरातों के महल होंगे जहाँ ये लक्ष्मी नारायण रहते होंगे। तो बुद्धि में आता है अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहाँ हम अपने मकान आदि बनाएंगे, ऐसे नहीं वहाँ मकान बनाएंगे, ऐसे नहीं कि कोई द्वारका नीचे से ऊपर आ जाएगी, हाँ कहेंगे भाई द्वारका डूब गई, लेकिन वो द्वारका चलो डूब गई तो वापस थोड़ी उसी रूप से आ जाएगी और हम उसमें राज्य करेंगे, नहीं। तो ऐसे नहीं कि वो द्वारका फिर निकल आएगी। जैसे शास्त्रों में दिखाया है, शास्त्र नाम ही चला आता है, शास्त्र नाम चला आता है, और तो कोई नाम रख नहीं सकते। और किताब, बाबा कहते और किताब होते हैं पढ़ाई के, एक होते हैं पढ़ाई के किताब, दूसरे होते हैं जो किताब होते हैं वो नॉवेल्स के किताब, और बाकी इतने इनको पुस्तक कहेंगे अथवा शास्त्र कहेंगे। तो शास्त्रों के किताब, नॉवेल्स के किताब, पढ़ाई के किताब, हाँ ये वो किताब होते हैं। तो बाबा कहते हैं तो वो है पढ़ाई की किताब। शास्त्र पढ़ने वालों को भक्त कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान दो चीज है। तो अभी हमारे पास लिटरेचर में जाओ वो क्या है, ज्ञान के किताब, दुनिया में जाओ भक्ति के किताब, और जहाँ जाओ नॉवेल्स ही नॉवेल्स, तो और फिर शास्त्रों के किताब। तो बाबा कहते हैं और पढ़ाई के किताब, कितने प्रकार की किताब है। तो बाबा कहते हैं भक्ति और ज्ञान दो चीजें हैं। अब वैराग्य किसका, ज्ञान भक्ति वैराग्य। तो ज्ञान मार्ग का बाबा कहते प्रारब्ध है सत्य त्रेता, फिर द्वापर कलयुग है भक्ति मार्ग, फिर वैराग्य किसका, बाबा कहते सारी दुनिया का। तो वैराग्य किसका, भक्ति का या ज्ञान का, किसका वैराग्य, भक्ति का, क्योंकि भक्ति को तो भूलना है ना, सारी दुनिया अभी भक्ति में है तो वो तो भूलना है। तो इसीलिए भक्ति का या ज्ञान का, जरूर कहेंगे भक्ति का वैराग्य। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो, अब बाप तुमको सुखदाई बनाते हैं। सुख धाम कोई स्वर्ग कहा जाता है, सुख धाम में तुम चलने वाले हो तो तुमको ही पढ़ाते हैं। अब जो चलेगा सुखदा में उसको ही पढ़ाएंगे ना बाबा, इसलिए तुमको ही पढ़ाते हैं। ये ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है, आत्मा का कोई धर्म नहीं है। ये जो देह के धर्म है वो सब शरीर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म है आत्मा के लिए कहेंगे, या हिंदू आत्मा है, ये क्रिश्चियन आत्मा है, ये फलानी आत्मा है, नहीं, आत्मा तो आत्मा ही है। तो बाबा कहते हैं वो तो सब आत्माएं हैं, परंतु फिर जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। हाँ, जिस घर में जन्म लिया उस आत्मा ने फिर वो धर्म अपना लेते हैं। अब हो सकता है पिछले जन्म में कोई और धर्म में हो, लेकिन बाबा ये जरूर कहते हैं कि अंत में सब वापस अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। हाँ, वो भी बाबा ने स्पष्ट किया है। तो बाबा कहते हैं आत्मा का कोई धर्म नहीं है, वो तो आत्मा है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग अलग होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है, क्या है आत्मा का धर्म, शांति। तो आत्मा का धर्म क्या है, एक तो आत्मा बिंदु मिसल है और फिर शांत स्वरूप है, और तीसरा, हाँ, बिंदु मिसल है, शांत स्वरूप है और शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। अब बाप समझाते हैं सब बच्चों का हक है। अब सब बच्चों का हक है किस, कौन सा, बहुत बच्चे हैं जो और कोई धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वो फिर निकल कर अपने असली धर्म में आ जाएंगे, है ना, अपने असली धर्म में आ जाएंगे, जो जो जिस जिस धर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी देखते हैं ना कैसे भारत की ओर बहुत आकर्षित होते हैं, भारत की शास्त्रों को पढ़ते हैं, भारत की कथाएं सुनते हैं, भले वो और धर्मों में है लेकिन उनको भारत बहुत अच्छा लगता है, भारत का सारा कल्चर उनको बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं सब बच्चों का हक है, बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वो फिर निकल कर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं वो सब पत्ते लौट कर आ जाएंगे, लौट कर अपने धर्म में आ जाएंगे, अपनी जगह पर लौट आएंगे। इन सब बातों को और कोई समझ नहीं सकेंगे। तो पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, इनमें ही सब मूंझे पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको कौन पढ़ाते हैं? हाँ, कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो देहधारी है, इनको ब्रह्मा को दादा कहेंगे। हाँ, दादा माना बड़ा भाई, तो इनको दादा कहेंगे। सब भाई भाई है ना, फिर है मर्तबे के ऊपर, आत्मा आत्मा सब भाई भाई है, फिर अलग अलग मर्तबे हैं सबके, फिर है मर्तबे के ऊपर। ये भाई का शरीर है, ये बहन का शरीर है, ऐसे कहेंगे। ये भी अभी तुम जानते हो, आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है, इतनी सब नॉलेज उस छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता, सितारे को शरीर चाहिए बात करने लिए, सितारे को पाठ बजाने के लिए अंग भी चाहिए। सितारों की दुनिया ही अलग है, जो केवल जहाँ सितारे रहते हैं आत्माएं, वो दुनिया ही अलग है। फिर यहाँ आकर के आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, वो है आत्माओं का घर। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर कितनी बड़ी चीज है, कहाँ वो छोटी सी बिंदी और इतना बड़ा शरीर। शरीर की बड़ी चीज है तो उनको कितना याद करते हैं। बड़ी चीज को याद करना सहज है, अभी छोटी सी चीज को याद करना मुश्किल हो जाता है। तो उनको कितना याद करते हैं शरीर को। अभी तुमको याद करना है एक परम पिता परमात्मा को, यह वही सत्य है। सत्य है, हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम है, तो वही सत्य है। जबकि आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है, गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम बाबा से अलग हुए हैं ना, याद आता है कितना समय अलग हुए हैं? आता है याद कितना समय अलग हुए हैं? अच्छा, याद है, 5000 साल का याद है। हाँ, तो बाबा कहते हैं याद है कितना समय अलग हुए हैं। बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं, वही आकर के सुनाते हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है वो नहीं, इस कल्प के लिए नहीं, लेकिन पिछले कल्प में भी ऐसे ही चली थी। एक सेकंड पास होता है, मिनट पास होता है, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं, वो समय वापस लौट कर नहीं आता है इस कल्प में, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं, पास होता जाता है। ताकि क्या कहेंगे, जैसे पास होता जाता है तो क्या कहते हैं, इतने वर्ष, इतने दिन, इतने मिनट, इतने सेकंड पास हो गए हैं। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर एक नंबर से शुरू होगा, एक्यूरेट हिसाब है ना, एक्यूरेट हिसाब। बाबा देखो कैसे स्पष्ट किया, एक्यूरेट हिसाब है ना, मिनट सेकंड सब नोट करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो मिनट सेकंड वो सब नोट करते हैं। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तुम गिनती कर बताते हो, श्री कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया है, तो श्री कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया, तो चलो बताते हैं, है ना। श्री कृष्ण का जब जन्माष्टमी आती है तो एग्जैक्ट 12 बजे नहीं करते, 12:01 क्या करते हैं, 12 बजे एग्जैक्ट करते हैं या थोड़ा एक मिनट जी, थोड़ा आगे ना, थोड़ा आगे कि नहीं, उसी समय 12 बजे। हाँ, तो 12 बजे वो सुई वहां आई और एकदम श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो बाबा कहते हैं, तो श्री कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया है, तो उनका तो जन्म चलो बताएंगे, वो तिथि तारीख सब कुछ बताएंगे। अब शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते, शिव बाबा ने कब प्रवेश किया ब्रह्मा के तन में वो पता नहीं चला, ब्रह्मा बाबा को पता ही नहीं चला। हाँ, तो वैसे तो बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो उस समय शिव बाबा ने प्रवेश किया, परंतु ये बताते थे हमारी दादी ब्रिज इंदिरा दादी थी बाबा की लौकिक बहू, उसको ये नशा था कि मैंने शिव बाबा का अवतरण ब्रह्मा तन में देखा, कैसे बाबा कमरे में अकेले बैठे थे बिल्कुल, और एकदम क्योंकि बाबा एकांत में चले गए थे, वापस आ गए थे वो बनारस से कलकत्ता से वापस आ गए थे, बिल्कुल जैसे खोए 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 वो रहते थे और अपने कमरे में रहते थे। तो जैसे बाबा को देखने गई, झांकने गई, बहू थी बाबा की लौकिक, घर में थे तो देखा बाबा का चेहरा इतना लाल लाल लाल, एकदम जैसे चारों ओर लाइट लाइट उसको दिखाई दी, और वो तो हैरान हो गई, और फिर बाबा की आंखें बंद थी और फिर धीरे धीरे बाबा ने आंखें खोली, आंखें भी लाल लाल थी। तो बाबा से पूछा, बाबा आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया? तो बाबा ने उस समय उसको कहा कि कोई लाइट थी, कोई माइट थी, वो लाइट थी, वो माइट थी, वो मेरे में प्रवेश हो गई। लेकिन उस समय वो घड़ी थोड़ी देखी होगी, कितने मिनट कितना सेकंड, कुछ भी नहीं। तो ये ब्रिजिंद्रा दादी बहुत नशे से कहती थी, मैंने देखा शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन में प्रवेश हुए। तो बाबा कहते हैं, तो शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते हो, श्री कृष्ण की तो तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है, मनुष्यों की घड़ी में भी फर्क पड़ सकता है। अब 10 घड़ियां रखो तो हर घड़ी थोड़ा सेकंड ऊपर नीचे तब बदल दे बताएगी ना, तो अलग होता है। तो मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता है, बिल्कुल हो बहु जैसे कल्प पहले आए थे वैसे ही आते हैं, पता भी नहीं पड़ता है कि कब आया, ऐसे भी नहीं कि साक्षात्कार हुआ तब आया। विष्णु का साक्षात्कार बाबा को सबसे पहले हुआ, ऐसे नहीं कि उस समय आया, नहीं, अंदाज से कह देते हैं, बाकी ऐसे नहीं कि उस समय प्रवेश हुआ, बस साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे, हम ऐसे बनेंगे, विष्णु ने उनको वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तुम मेरे जैसे हो, तुम मेरे जैसे बनोगे। तो बाबा कहते उस समय हुआ, लेकिन वो तारीख वो समय वो तो कुछ भी नोट नहीं किया होगा, बस साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सब सेंटरों पर अलग अलग सुनाते ना, तो अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहला सुख धाम में चलने के लिए सुखदाई बनना है, सुख धाम में चलने के लिए सुखदाई बनना है, सबके दुख हर कर सुख देना है, कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है। दूसरा, इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है, बहुत अमूल्य है आत्मा शरीर में, वही अमर अविनाशी है, इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, देह का भान मिटा देना है। वरदान, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव, अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव, जैसे बाप लोन लेता है, ब्रह्मा तन का लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। स्लोगन, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। मनसा सेवा क्या है? याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब तक किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वो संकल्प के रूप में हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क में रूप में के रूप में, चाहे अपनी कोई विशेषता के तरफ हो, हाँ, कोई भी लगाव हो, वो बंधन मुक्त कर देगा। ये लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वो विश्व कल्याणकारी भी बना नहीं सकेंगे। इसलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। डबल फॉरेनर्स, आई विल क्विकली give today's program. Please pay attention, or you can see the board outside History Hall and come to know about it. This morning, 10:30 to 11 meditation and 11 to 12:15 Sudesh Didi is going to give class on the topic How We Meet Baba. Sudesh Didi, 11 to 12:15, How We Meet Baba in the Meditation Hall of Gyan Sarovar. And then 4 to 4:30, Sudesh Didi is going to meet all those from the Americas, North, South, Central America, Canada, Caribbean. You know, she's going to meet all the Americas from 4 to 4:30 in Dadi's cottage upstairs, Gyan Sarovar. And 4 to 5 p.m. personal meeting with Sister Manju, if anybody wants to meet her in Manjuben's office. Then 5:30 to 7:30 creative meditation with Sister Manju in the training center, room number 8. So that is okay. Om Shanti.
Om Shanti. Om Shanti. Those double foreign sisters and brothers are sitting here, please raise your hand. Okay. And those who are staying in Panda Bhavan, if you have not filled the registration form, today after breakfast, go to the deposit office just opposite to dispensary and fill the registration form, leave your room number and collect badge for Baba's meeting. And secondly, make sure don't lose your badge here and there. This is very important. You have to be very careful. Achha, aaj gurwar hai. Hum sab mil karke pyare Baba ko bhog swikar karayenge. Aur bhog ke baad jo Baba sunayenge, wo sunenge. Aur uske baad amrit आप सबको हिस्ट्री हॉल के सामने वहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्थान लिमिटेड है, वो भी आप देख रहे हैं। आज तो ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल बाबा की गोदी में बैठे, ऐसे लगता है ना, बाबा की गोदी में आराम से बैठे हैं और गरम गरम है, बिल्कुल ठंडा नहीं है। बाहर तो देखो कितना ठंडा है और बाबा ने कितना सुख दे दिया। अच्छा, जो भाई बहने शांति वन से है वो हाथ खड़ा करें। देखिए शांतिवन से आए हुए आप सभी का सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन ऊपर के डाइनिंग हॉल में होता है। ये सबको ध्यान देना है क्योंकि नीचे जो है कुछ काम चल रहा है, इसलिए सभी को ध्यान देना। कोई भी नीचे बैठ करके नीचे के डाइनिंग हॉल में, वहाँ बहुत लिमिटेड स्थान है केवल मधुबन निवासियों के लिए, वो भी मुश्किल से है, तो सबको ऊपर के ही डाइनिंग हॉल में नाश्ते के लिए जाना है। दोज हु हैव कम फ्रॉम ज्ञानसर रेज योर हैंड, आज वेलकम है। अभी हम सभी बाबा के पास जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। आज तो बहुतों के निमित्त भी भोग है, खास करके हमारे आदरणीय भ्राता रमेश भाई जी के निमित्त भी भोग है, क्योंकि कल 28 तारीख को उनका भी स्मृति दिवस था, तो हम सब मिलके उनके प्रति भी बाबा को याद प्यार और भोग स्वीकार कराएंगे। और भी कईयों के भोग हैं, उन सब की भी बाबा को याद दी जाएगी। ओम शांति।
सच्चा श्रृंगार उड़
वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी बहुत ही प्यार भरी यादों के साथ, जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन में देखा कि वहाँ सजावट तो बहुत सुंदर थी, लेकिन बाबा दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए। जब तक मैं बाबा से पूछूं कि बाबा आप कहाँ गए थे। बाबा ने कहा आज बाबा पूरे विश्व के अंदर अपने बच्चों का और प्रकृति का तथा विश्व के जो इस समय गणमान्य व्यक्ति अलग अलग स्थानों के, चाहे धार्मिक नेता है, चाहे सामाजिक, चाहे विश्व के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, उनके पास चक्कर लगाने के लिए गए थे। तो बाबा ने कहा कि पहले तो बाबा ने खास उन लोगों को देखा जो धार्मिक नेताएं हैं, उनके अंदर एक ऐसी लहर है कि कुछ ऐसा करें जो मनुष्य अपने जीवन के अंदर कुछ प्राप्त करे, और साइंटिस्ट और समाज सेवक वे भी भिन्न भिन्न साधनों के द्वारा कुछ न कुछ कार्य करना चाहते हैं। लेकिन उनके सामने फिर बाबा ने ऐसे दिखाया, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, जैसे उनके सामने काफी सारे ऐसे उलझने हैं, तो उन उलझनों में भी फंसे हुए हैं वो, कोई न कोई ऐसी प्रकार की युक्ति चाहते हैं या कोई ऐसा रास्ता चाहते हैं जो अपने कार्य में सफल हो सके। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि बाबा अपने बच्चों को देख रहे थे, एक तरफ तो कई बच्चे अपने पुरुषार्थ की उधेड़ बुन में, उलझन में ही कंफ्यूज हो रहे थे, कई ऐसे बच्चे थे जो सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन सेवा के प्लान में भी उनके सामने कुछ न कुछ ऐसी बातें आ रही थी कि मैं करूं बस मेरा ही नाम हो। और तीसरी तरफ कई बच्चे ऐसे थे जो अपने लौकिक बातें, लौकिक बंधन या फिर इस चिंतन में मस्त थे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस चिंतन में लगे हुए थे। और बाबा इनको देख भी रहे थे, और बहुत कम ऐसे बच्चे थे जो केवल बाबा से आज के दिन बहुत प्यार भरी रूह-रूहान से अनुभव कर रहे थे। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा समय क्या दिखा रहा है। बाबा ने पहले से ही बच्चों को अचानक का पाठ पढ़ाया है, और लौकिक दुनिया में भी अचानक प्रकृति और कई सर्कमस्टांसेस मन नचेत आते हैं, और बाबा के बच्चों के सामने भी अचानक का पाठ अभी भी चल रहा है, आगे चल करके और ज्यादा स्पीड में आएगा। तो उसके लिए बच्चों को अपने आप को पहले से तैयार करना है। तो मैंने संकल्प किया बाबा क्या करना होगा। तो इतने में बाबा ने कुछ कहे तो बाबा ने सब बच्चों को वहां पर इमर्ज किया, और इमर्ज करते हुए बाबा सबको दृष्टि भी दे रहे थे। दृष्टि के साथ साथ बाबा ने हर बच्चे को एक फाउंटेन दिया, और वो फाउंटेन दिया तो बाबा ने कहा इस फाउंटेन को ऑन करो। तो सब बच्चे उस फाउंटेन को लेके ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऑन ही नहीं होता है क्योंकि उसका स्विच भी दिखाई नहीं देता था। तो बाबा ने कहा फिर ध्यान से देखो। तो उसका एक तरफ था स्विच जो बिल्कुल छोटा सा बिंदी लगा हुआ था, और बाबा ने कहा ध्यान से देखो, उस बिंदी की जो लाइट थी इतनी सूक्ष्म थी, और उसको जैसे टच करते थे तो वो फाउंटेन ऑन हुआ। फिर ऑन तो हो गया, लेकिन दूसरी तरफ एक और छोटी सी बिंदी थी, उस बिंदी में थोड़े अलग अलग डिजाइन बने हुए थे। तो बाबा ने कहा उसको टच करो। फिर उसको टच करते ही जैसे ही टच किया तो वो फाउंटेन के चारों तरफ अलग अलग प्रकार की किरणों की लाइट्स निकलने लगी। फिर तीसरी तरफ एक बिंदी थी और उसके अंदर ऐसे हार्ट शेप और उसके अंदर चारों ही तरफ बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा उसको टच करो। तो जैसे उसको टच किया तो टच करते ही पहली बिंदी की जो फाउंटेन था वो बाबा ने कहा, पहली बिंदी बाबा बच्चों को बार बार कहते हैं कि अपनी आत्मा की स्मृति शक्ति स्वरूप में रहो। दूसरी बिंदी के लिए बाबा ने कहा कि बाबा के सामने जो बच्चे हैं जो बार बार प्रस्तुतियों के बारे ज्यादा सोचते हैं और बाबा से जो प्राप्ति होती है उसका अनुभव होते हुए भी उस अनुभव से अपने को वंचित करते हैं, तो बाबा ने कहा इस बिंदी के स्वरूप के द्वारा बाबा ने जो वरदान दिए हैं उन वरदानों का स्वरूप बने। फिर तीसरी के बाबा ने कहा दिल में एक के बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस स्मृति से सर्व शक्तियां और सर्व प्राप्तियां अनुभूति करेंगे। फिर जैसे ही तीनों स्विच ऑन होते हैं तो एक तो बच्चों का संपन्न स्वरूप दिखाई देने लगा और दूसरा बच्चों के द्वारा चारों तरफ से लाइट फैली जो भक्तों और साइंटिस्ट और लोगों के पास पहुंच रही थी। तीसरा फिर उसके द्वारा ऐसे लग रहे थे जैसे भविष्य राजधानी के होवनहार विश्व महाराजन हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन समय और ड्रामा ऐसा खेल दिखाने वाला है, उसके लिए पहले से ही सब बातों से अपने को न्यारा करके बीच बीच में साइलेंस में बैठ करके बिंदी स्वरूप का अनुभव करेंगे तो लाइट भी रहेंगे और शक्ति का अनुभव भी करेंगे और बाबा जो हर कदम पर बच्चों को मदद करता है वो मदद का भी अनुभव करेंगे और अचानक परिस्थितियों को सहज रीति से पार भी कर सकेंगे। तो बाबा ने ऐसे कहा। फिर बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे, प्यार के साथ साथ फिर बाबा दृष्टि देते हुए फिर वही फाउंटेन सबको दिखाया, वैसा ही स्वरूप लग रहा था। बाबा ने कहा फाउंटेन समान शक्तिशाली चारों ही तरफ विश्व के अंदर ऐसी लहरें फैलाओ जो प्रत्यक्षता और विश्व परिवर्तन का कार्य जल्दी संपन्न हो। फिर बाबा को सबके याद प्यार दिया और बाबा ने सबको समाज याद प्यार का रिटर्न भी दिया। खास करके रमेश भाई को इमर्ज करते हुए बाबा ने कहा बाबा का लाडला, सेवा के क्षेत्र में बहुत क्रिएटिव और यज्ञ के कई कारोबार को सुचारू रूप से, विशेष करके अकाउंट का सिस्टम को सुचारू रूप से चलाते हुए बच्चे ने बहुत अच्छी सेवाएं की हैं। अभी एडवांस पार्टी में भी बच्चा बहुत सेवा कर रहा है और सबको याद दिया। ओम शांति।